सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वर्षायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् कम्मठजनियवेयण उवहि समुत्तिण्णये जिणेणमिं वेयण महाहियारम् विविह हियारम् परुवेमो। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित धवला टीका है जो षटखंड अगम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धरसेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। 12वीं पुस्तक जो चतुर्थ वेदना खंड, उसमें वेदना भाव विधान अनुयोग द्वार के चूलिका की बात चल रही है। यहाँ पे उसमें द्वितीय चूलिका चल रही है, 145 पृष्ठ पर आए हैं हम। अनुभागों की बात चल रही है ना, यहाँ पर भाव विधान यानी अनुभाग की चर्चा है। अनुभाग को यहाँ भाव कहा है, कर्मों का भाव क्या है उसका अनुभाग है। तो यहाँ अभी हम देख रहे हैं नीचे शंका से शुरुआत करते हैं, नीचे से दूसरी लाइन। एक अंक के प्रति प्राप्त अविभाग प्रतिच्छेदों की स्पर्धक संज्ञा योग्य है, क्योंकि अंतर को प्राप्त होकर क्रम से उनमें वृद्धि देखी जाती है, किंतु जघन्य स्थान से सहित स्पर्धक की स्पर्धक संज्ञा योग्य नहीं है। कल क्या बात हुई थी उसको जरा देखते देखो। हाँ, वो एक परमाणु में जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसको तो स्वीकार किया स्पर्धक, तो जघन्य स्थान के सहित वाला जो स्पर्धक है उसको स्पर्धक नहीं कह सकते, ये बात वो पूछना चाहते हैं। देखो ऊपर इसी 145 पृष्ठ पर ऊपर की जो शंका थी ना, उसमें उसने पूछा था कि स्पर्धक किसे कहते हैं, स्पर्धक संज्ञा कैसे है, किसको, ये जो विरलन करके प्रक्षेप जितना हुआ था तो प्रक्षेप में जितना अनुभाग बढ़ा उसको प्रक्षेप में जितनी स्पर्धक शलाका थी उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उसको कहते एक अंक के प्रति प्राप्त राशि, तो उसको एक एक स्पर्धक कहा था। देखो जितना अनुभाग बढ़ा है उसको हमने इतने नंबर ऑफ स्पर्धकों में डिवाइड कर दिया, मान लेते 10 स्पर्धकों में डिवाइड किया तो वो हुई उसकी स्पर्धक शलाका, नंबर ऑफ स्पर्धक। तो ये बढ़े हुए प्रक्षेप की बात चली ना, तो बढ़े हुए अनुभाग को हम प्रक्षेप में जितने स्पर्धक है उस स्पर्धक शलाका से भाग देंगे तो एक स्पर्धक की वैल्यू आ जाएगी, यानी अनुभाग की उतनी वैल्यू है, उसी को स्पर्धक कहा, उस अनुभाग को ही वहां स्पर्धक कहा है। तो वहां शंकाकार ने पूछा था इसको स्पर्धक कैसे कह सकते हो, तो उसका समाधान ये हमने कल जो पढ़ा था ना उसको दोबारा पढ़ रही हूं मैं 145 पृष्ठ पर, कि अंतर करके क्रम से वृद्धि को प्राप्त हुए सांतर अविभाग प्रतिच्छेदों को स्पर्धक कहा जाता है, उसमें बीच बीच में अंतर है उसी को यहां स्पर्धक कहा है। इसलिए यहां जो एक एक अंक की प्रति प्राप्त राशि यानी वो जो हमने विरलन कर दिया और एक एक अंक के प्रति उसको समखंड करके दिया है, दूसरी भाषा में जो प्रक्षेप है एडिशनल जितना अनुभाग बढ़ा है उसको हमने स्पर्धक शलाका से भाग दिया था तो उसको कहा एक एक अंक के प्रति प्राप्त राशि, तो वो स्पर्धक की वैल्यू आ गई। तो इतना अनुभाग अंतर सहित बढ़ता चला जाता है, यानी उसमें क्रम से वृद्धि भी है और बीच बीच में अंतर भी है, इसलिए उसका नाम ही स्पर्धक कहा। अभी जो हमने शंका पढ़ी थी उसको अभी आगे पीछे पृष्ठ पर देखते हैं। उन्होंने क्या कहा, अभी जो एक अंक के प्रति प्राप्त जो अविभाग प्रतिच्छेद, उसको तो हमने स्पर्धक उसने कबूल कर दिया। अब कहता है जघन्य स्थान से सहित स्पर्धक की स्पर्धक संज्ञा योग्य नहीं है। जो जघन्य स्थान में जो स्पर्धक है ना, हमने पहले देखे थे परमाणुओं की रचना वगैरह होती है, तो उसको अभी स्पर्धक मत कहो, ऐसा कहता है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि स्पर्धक सहित जघन्य स्थान को सहचार से अथवा अभेद से स्पर्धक रूप स्वीकार किया गया है, या अभेद से उसी को स्पर्धक कह सकते हैं हम, यानी जघन्य स्थान को ही स्पर्धक रूप से कह सकते हैं। द्वितीय स्पर्धक का भी अनंत बहुभाग वर्गणांतर और शेष अनंतवा भाग द्वितीय स्पर्धक की वर्गणाएं होती है। क्या ये पहला स्पर्धक उन्होंने बता दिया, अब दूसरा स्पर्धक कैसा है, तो उसमें भी कुछ वर्गणाएं हैं और कुछ अंतर है। तो वर्गणांतर ज्यादा है और वर्गणाएं कम है, तो उसको क्या कहा, तो ज्यादा यानी कितना ज्यादा, तो वो सारे जो पूरे एक स्पर्धक के हम अनंत भाग करेंगे तो उसमें अनंत बहुभाग तो अंतर है और अनंत वा भाग इतनी वर्गणाएं हैं। एक वर्गणा किसको कहते हैं, एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से बढ़ती हुई, वो भी अनंत है और उससे अनंत गुना तो बीच में अंतर है, यही कहते हैं। देखो द्वितीय स्पर्धक का भी कहा उसमें, यानी सभी स्पर्धकों में भी ऐसा ही है, अनंत बहुभाग वर्गणांतर और शेष अनंत वा भाग द्वितीय स्पर्धक की वर्गणाएं होती है, क्योंकि एक प्रक्षेप के भीतर स्पर्धकों के स्पर्धकांतर सदृश होते हैं, ऐसा जिन भगवान का उपदेश है। क्या कहते हैं, जैसे हमने जघन्य स्थान में देखा था, जघन्य स्थान में जितने स्पर्धक थे वो हर एक में वर्गणाओं का और अंतर का प्रमाण समान था, क्योंकि उसी को हमने स्पर्धक कहा था ना। अब ये एडिशनल हुआ, प्रक्षेप हुआ, तो प्रक्षेप में जितने स्पर्धक बनेंगे वो भी स्पर्धक एक दूसरे के साथ समानता है, तो उसका जो अवर्गणा का अंतर है वो भी समान होगा, वर्गणाओं की संख्या भी समान होगी उस विशिष्ट प्रक्षेप के लिए, जो एडिशनल हमने अनुभाग देखा उसके लिए। इसी प्रकार सब जगह प्ररूपना करनी चाहिए। तृतीय स्पर्धक को ग्रहण करके द्वितीय स्पर्धक के ऊपर मिलाने पर औपचारिक स्पर्धक होता है। औपचारिक स्पर्धक यानी ये तो अनुभाग बढ़ा है ना, तो उसको हमने स्पर्धक कह दिया, कहना इसलिए उसको कहा औपचारिक स्पर्धक। इस प्रकार जाकर अंतिम स्पर्धक कब उत्पन्न होगा, तो द्विचरम स्पर्धक के ऊपर एक प्रक्षेप करने पर। एक प्रक्षेप यानी वो प्रक्षेप का एक भाग, एक एक स्पर्धक जितना भाग हमने जो एक अंक के प्रति प्राप्त राशि हमने हर एक बार मिलाई थी, तो कहते हैं इस प्रकार जाकर अंतिम स्पर्धक का या अंतिम स्पर्धक मिलाना किस में, द्विचरम में। तो कहते हैं औपचारिक द्विचरम स्पर्धक के ऊपर प्रक्षेप करने पर यानी मिलाने पर, अंतिम स्पर्धक द्विचरम स्पर्धक में मिलाने पर अनंत भाग वृद्धि का प्रथम स्थान होता है। पहला स्पर्धक, दूसरा स्पर्धक, तीसरा स्पर्धक, ऐसे अनंत स्पर्धक प्रक्षेप में बन गए। अंतिम स्पर्धक में स्पर्धक की वैल्यू आई नहीं हो वहां पर, तो वहां पर वो द्वितीय स्थान कहने में आता है। पहले जघन्य स्थान था, अब दूसरा स्थान है, वो कितना बढ़ा, तो अनंत वे भाग बढ़ा, तो उसको हम कहेंगे अनंत भाग वृद्धि का ये पहला स्थान है। जघन्य को तो हम जघन्य कहते हैं, जघन्य में तो क्या वृद्धि का सवाल नहीं था, और जघन्य के आगे क्या हुआ, उसके अनंत वा भाग उसमें बढ़ गया, तो यहां से अनंत भाग वृद्धि का प्रारंभ हो गया, यानी अनंत भाग वृद्धि में से ये पहला स्थान होगा। यहां लिखा ना क्या कहते हैं, देखो अनंत भाग वृद्धि का प्रथम स्थान होता है। पहले उसके पहले वाला स्थान तो जघन्य स्थान था, यानि सब स्थानों में उसको पहले स्थान कहा था, परंतु यहाँ वृद्धियों में स्थान का नंबर लगा रहे हैं। पहले से दूसरा कुछ अधिक है, कुछ अधिक की वैल्यू कितनी है, तो अनंत वे भाग से अधिक है, तो उसको कहा अनंत भाग वृद्धि। अब उसके आगे भी अनंत भाग वृद्धि, उसके आगे भी अनंत भाग वृद्धि, ऐसे स्थानों को देखेंगे तो उन अनंत भाग वृद्धि वाले स्थानों में इसका पहला नंबर है। ख्याल में आते है? नहीं 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 नहीं, वो द्विचरम प्रक्षेपों पर स्पर्धक आ गया, ये पूरा ही जितना स्पर्धक हुआ ना, ये स्पर्धक नहीं प्रक्षेप हुआ, उसके स्पर्धकों की बात फिनिश हो गई। अब जो दूसरा स्थान किसको कहेंगे, जिस परमाणु में मैक्सिमम अनुभाग है, यानी अंतिम स्पर्धक की वो वर्ग की बात कर रहे, अंतिम स्पर्धक में जितना अनुभाग है उसी को यहाँ अंतिम स्पर्धक के अंतिम वर्गणा का अविभाग प्रतिच्छेद कहेंगे और उसी को स्थान नाम देंगे। तो ये दूसरा स्थान हुआ, नहीं समझे, देखो ये जघन्य स्थान कहा, जघन्य स्थान किसको कहते हैं, मैक्सिमम अविभाग प्रतिच्छेद जिस परमाणु में हो, क्योंकि इसमें भी वर्गणाएं है, स्पर्धक है, सब कुछ है, परंतु उसको हमने स्थान नहीं कहा। स्थान किसको कहा, उस विशिष्ट परमाणु, वो जो बंद हुआ था ना, उस समय जो विशिष्ट बंद हुआ था उसमें मैक्सिमम अनुभाग कितनी पर कितना पड़ा था, उसको जघन्य स्थान कहा था। ये कब होता है, ज्ञानावरण की बात चल रही है, सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में होने वाला बंद जघन्य स्थान कहेंगे उसको हम। सूक्ष्म सांप्राय के द्विचरम समय में बंद हुआ वो कितना हुआ, हाँ तो उसमें वो तो अनंत गुणा हुआ था, परंतु यहाँ उसकी बात चल नहीं रही, हम जघन्य स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, उसकी बात चल रही है। तो जघन्य स्थान से उसके आगे वाला स्थान अनंत भाग वृद्धि, ये षट स्थान वृद्धि के स्वरूप बताना है। तो हमने इस स्थान से शुरू किया, अब ये सूक्ष्म सांप्राय को भूल जाओ, कोई भी जगन्य नहीं, सब जगह अनंत भाग वृद्धि नहीं होती, कहीं कहीं अनंत भाग अनंत गुणा वृद्धि भी होगी। देखो यहाँ जगन्य स्थान की स्थान अनुभाग का स्थान किसको कहते हैं, जो कोई मैक्सिमम नंबर ऑफ अनुभाग बांधा। अब द्वितीय स्थान किसको कहेंगे, अन्य कोई बांधने वाला जो है जिसमें अनंतवा भाग ज्यादा है, इस अनुभाग से अनंतवा भाग ज्यादा है। हाँ हाँ, तो ये अनुभाग कितना है, तो वो भी अनंत भाग वृद्धि को यहाँ बता रहे हैं। जघन्य स्थान से कोई भी दूसरा अनंत भाग वृद्धि वाला स्थान यहाँ बताना चाहते हैं। अभी वो किस पॉइंट पर है उसकी चर्चा यहाँ नहीं लेना। जैसे हम षट्स्थान वृद्धि देखते हैं, तो षट्स्थान वृद्धि में पहली वृद्धि कौन सी होती है, अनंत भाग वृद्धि। तो यहाँ अनंत भाग वृद्धि से जो दूसरा स्थान आएगा उसकी बात चल रही है। यहाँ अनुभाग जितना था और यहाँ कितना बढ़ गया है, तो अनंतवा भाग बढ़ गया है। अनंतवा भाग बढ़ने पर भी इसमें स्पर्धक वर्गणाएं वगैरह कितनी हुई, तो अनंत हुई है। तो ये जो प्रक्षेप में जितने स्पर्धक हो गए वो एक दूसरे से समान है। यहाँ वाला जो स्पर्धक वगैरह थे उसकी वैल्यू अलग थी, उससे अनंत गुणा यहाँ पर हो गए हैं। जघन्य स्थान वाले जो स्पर्धक थे, वाले कहना भी, जघन्य स्थान तो एक मैक्सिमम अनुभाग को कहा, परंतु उसको हमने कहाँ पर लिया, अंतिम स्पर्धक के अंतिम वर्गणा के एक एक परमाणु में जितना अनुभाग है उसको हमने वहां काउंट किया था। पर वहां भी जितने स्पर्धक वगैरह रचना हम बता सकते प्रदेशों की, वहां पर भी तो वहां जितना अनुभाग था, नंबर ऑफ स्पर्धक थे, उससे अनंत गुणे यहां बन गए। उसकी तो हमने सभी डिटेल्स देखी, अभी हमने क्या देखा यहाँ पर, ये इस प्रकार वाले हैं ना, वहां से पढ़ती हूँ मैं, ये पैराग्राफ की चौथी लाइन के अंत में, इस प्रकार जाकर अंतिम स्पर्धक का औपचारिक द्विचरम स्पर्धक के ऊपर प्रक्षेप करने पर, अभी जो हमने ये जो सारा प्रक्षेप पूर्ण देखा उसमें पहला स्पर्धक, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे अनंत स्पर्धक उसमें है, उसमें से द्विचरम स्पर्धक की वैल्यू उन्होंने हमने निकाली, उसमें अंतिम स्पर्धक की वैल्यू मिलाएंगे तो ये लास्ट स्थान आ जाएगा। नहीं नहीं, ये पूरा प्रक्षेप की बात नहीं है, एक प्रक्षेप है, एक स्पर्धक के लिए जितना प्रक्षेप है उतना, क्योंकि एक अंक के प्रति हमने निकाला था ना, उसका द्विचरम में मिलावे तो ये अंतिम स्पर्धक आया, अंतिम स्पर्धक आया यानी मैक्सिमम अनुभाग की वैल्यू आई हमें, उस मैक्सिमम अनुभाग को ही द्वितीय स्थान कहेंगे हम, ये जघन्य स्थान, ये दूसरा स्थान, परंतु ये दूसरा स्थान कितनी वृद्धि से आया हुआ है, अनंत भाग वृद्धि से आया हुआ है, तो अनंत भाग वृद्धि का ये पहला स्थान, इसके ऊपर अनंत भाग वृद्धि का दूसरा स्थान, उसके ऊपर अनंत भाग वृद्धि का तीसरा स्थान, ऐसे कांडक प्रमाण होंगे उसमें असंख्यात बार, यानी ये जो दूसरी स्थान है, दूसरा स्थान, उसी को अनंत भाग वृद्धि में से पहला नंबर है उसका, ये बात बताना चाहते हैं। यहाँ जो प्रक्षेप लिखा है वो पूरा प्रक्षेप नहीं, एक स्पर्धक वाला प्रक्षेप, इस प्रकार एक प्रक्षेप में, अभी जो एक प्रक्षेप लिखा है ये प्रक्षेप है, पहले स्थान से एडिशनल होकर जो दूसरा स्थान आया है वो पूरा का पूरा प्रक्षेप समझना, एक प्रक्षेप में अनंत स्पर्धकों के अस्तित्व की प्ररूपणा की गई है, यानी अनंतवा भाग बढ़ा उसमें अनंत स्पर्धक बने नए, अनंतवा भाग ही बढ़ा है अभी, ये अनुभागों की वो बहुत, क्योंकि अनंतों में होती है ना, देखो शंका, स्पर्धक प्ररूपणा किस लिए की जा रही है, तो ये उसमें इतना अनुभाग बढ़ा इतना कह दो ना, उसमें स्पर्धकों की बातें क्यों कह रहे हो, समाधान, स्थान संज्ञा वाले इन अविभाग ग रह गया, अविभाग क्या कहते हैं, अविभाग प्रतिच्छेदों में, अभी अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ गए तो उसको हमने स्थान कह दिया, मैक्सिमम अनुभाग को यानी मैक्सिमम अविभाग प्रतिच्छेदों को हमने स्थान कह दिया, उसको स्थान ऐसा नाम है, स्थान संज्ञा वाले अविभाग प्रतिच्छेदों में, यानी जिस अविभाग प्रतिच्छेद को हमने स्थान कह दिया तो वही मैक्सिमम अनुभाग को ही हमने स्थान कह दिया है, उसमें इन अविभाग प्रतिच्छेद स्थानों के आधारभूत परमाणु है और इनके नहीं है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए उक्त स्पर्धक प्ररूपणा की जा रही है, इसका अर्थ ख्याल में आया, हमने किसी विशिष्ट अनुभाग को स्थान कह दिया, जघन्य हो या आगे वाला हो, कहीं का भी हो, तो उस स्थान में क्या क्या है, तो ये मैक्सिमम जिस परमाणु में अविभाग प्रतिच्छेद है उसको हमने स्थान बता दिया, परंतु उसमें कितने ही ऐसे परमाणु उस स्थान में स्पर्धकों की बात कहने की आवश्यकता क्या थी, क्योंकि हमने देखा था उसमें क्या क्या है, एक स्पर्धक है, दूसरा स्पर्धक है, तीसरा स्पर्धक है, चौथा स्पर्धक है, ऐसे अनंत स्पर्धक है, और हर एक स्पर्धक में क्या है, वर्गणाएं हैं और वर्गणांतर है, वर्गणाएं हैं, अंतर है, वर्गणा है, अंतर है, उसका अर्थ ऐसा है कि ये परमाणु विशिष्ट अनुभाग वाले ही परमाणु है और विशिष्ट अनुभाग वाले कोई परमाणु ही नहीं है, वहां तो नंबर ऑफ परमाणु है बस, तो किन्हीं किन्हीं परमाणुओं में ये एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से उड़ते ऐसे बढ़ते हुए कुछ परमाणु हैं, बीच वाले ऐसे अविभाग प्रतिच्छेद है कि उसके धारक कोई परमाणु ही नहीं है, फिर कुछ परमाणुओं में इतना अविभाग है वो भी बढ़ते हुए क्रम से है जिसको हम वर्गणा कहते हैं, फिर बीच में वर्गणा ही नहीं है, इसका अर्थ क्या है, उतना अविभाग प्रतिच्छेद वाले परमाणु ही एग्जिस्टिंग नहीं है। देखो इस वाक्य को फिर पढ़ती हूँ मैं। स्थान संज्ञा वाले इन अविभाग प्रतिच्छेदों में, उन्होंने तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अविभाग प्रतिच्छेद बता दिया, अब उसमें इन अविभाग प्रतिच्छेद स्थानों के आधारभूत परमाणु है और इनके नहीं है इस बात का ज्ञान कराने के लिए उक्त स्पर्धक प्ररूपणा की जा रही है। केवल अनंत अनुभाग वाले परमाणु है, कुछ कम अनुभाग वाले है, इतनी बात नहीं, उसमें बीच में कितने ही अनुभाग वाले कोई परमाणु ही नहीं, ये बात बताना चाहते हैं। सब कहीं भी स्पर्धक की प्रयोग किसी भी जगह है, स्थान कहेंगे तो स्थान तो हमने मैक्सिमम, जैसे आप ये संदृष्टि निकालना, ये अपने 88 पर कहाँ पर थी वो 88 नहीं दूसरा कुछ 99 पर देखो यहाँ स्थान बताया है, एक स्थान किसको कहा, इस पूरा जो ये जो है ना, देखो ये 8 8 8 8 चार बार लिखा है, उसका अर्थ है जघन्य वर्गणा के चार परमाणु है जिसमें 8 अविभाग प्रतिच्छेद है, दूसरी वर्गणा में 9 9 अविभाग प्रतिच्छेद, तीसरे में 10 10 है, चौथे में 11 11 है, बीच में अंतर छोड़कर फिर आगे 16 का नंबर आया, 16 17 18 19 तो क्रम से है, फिर अंतर हो गया, फिर 24 से 27 फिर 32 से 35 इस तरह से, तो सबसे ज़्यादा अविभाग किस में है इस टेबल में, 51 नंबर, तो यहाँ स्थान कह दिया, 51 नंबर को स्थान कहा, बस 51 अविभाग प्रतिच्छेद ये स्थान हुआ। अब हमने तो बोल दिया कि इस स्थान में 51 अविभाग प्रतिच्छेद है, तो क्या 51 तक, 1 से लेकर 51 तक सभी अनुभाग वाले इसमें परमाणु पाए जाते हैं, तो कहेंगे नहीं मिनिमम 8 से पाए जाते हैं, तो क्या 8 से कंटिन्यूस पाए जाते हैं, तो नहीं, बीच बीच में अंतर है, 8 9 10 11 वाले परमाणु इसमें है, कितने हैं उसकी भी चर्चा छोड़ दो, फिर 16 से 19 वाले हैं, 24 से 27 वाले हैं, 32 से 35 वाले हैं, 40 से 43 तक है और 48 से 51 तक है, हाँ तो 12 13 14 15 वाले परमाणु अनुभाग वाले कोई परमाणु ही यहाँ नहीं है, उतने अविभाग प्रतिच्छेद के धारक कोई परमाणु है ही नहीं है। देखो हम स्थिति में क्या देखते थे, स्थिति अभी आबाधा को छोड़ो और जघन्य स्थिति से लेकर एक 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 समय लेकर निरंतर स्थिति वाले परमाणु पाए जाते, निषेक रचना में उसमें बीच में कोई अंतर नहीं था, अभी अविभाग रचना में जिसको हम स्थान कहते हैं उसमें बीच बीच में ऐसे गैप होके ने जंप्स है, इतने कंटिन्यूस अविभाग प्रतिच्छेद फिर जंप है, फिर वो दुगुने हो जाते हैं पहले से। निषेक रचना में स्थिति की अपेक्षा परमाणु बताए, यहाँ अनुभाग रचना में भी परमाणु है परंतु वो अनुभाग की अपेक्षा है, अनुभाग की अपेक्षा है, अभी यहाँ स्थिति की चर्चा नहीं है, यहाँ अनुभाग की चर्चा है, तो विशिष्ट अनुभाग वाले परमाणु है उन्हें हमने पहला नंबर दिया नीचे, वर्गणा, एक वर्गणा, एक अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा है वो दूसरी वर्गणा, वहां भी प्रदेश है ना, परमाणु है वहां पर, तीसरी वर्गणा में एक अविभाग प्रतिच्छेद और एक बढ़ गया, चौथी में और एक बढ़ गया, तो बढ़ते बढ़ते फिर रुक गया, अभी कोई ऐसे परमाणु नहीं है बीच वाले अनुभाग वाले, फिर जाके वो पहले नंबर पर जो थे यहाँ जो हमने 8 माने वो 16 हो जाते हैं, तो 16 से फिर कंटिन्यूस कुछ वर्गणाएं बनती है, फिर ये 19 के बाद 20 21 22 23 यहाँ जो बताए हैं वैसे वाले कोई परमाणु ही नहीं, यहाँ तो इक्वल बताए, चार वर्गणाएं बताई और चार वो बीच में गैप बताया, मूल में वो तो अनंत वा भाग हो तो वर्गणाएं होती है, और बीच का अंतर जो है अनंत गुणा होता है। ये जगन्य स्थान की बात है। आगे मान लेते 51 से बढ़कर हम मान लेते कि 500 हो गए मानने के लिए, तो पहले 51 के बाद बीच में बहुत सारा अंतर चला जाएगा और फिर उसके जो अपने स्पर्धक जो है वहां से वहां तक हो गए, परंतु उसमें भी कंटिन्यूअस नहीं होते। जैसे यहां बीच बीच में गैप थी, बीच बीच में अंतर था, वैसे वहां भी बीच बीच में अंतर होता है। तो ऐसे अंतरों को कैसे गिनेंगे हम? तो हम स्पर्धकों में गिनेंगे, इतने स्पर्धक होते हैं। तो हर स्पर्धक में क्या होता है? हर स्पर्धक में वर्गणा अंतर, फिर दूसरे स्पर्धक में फिर वर्गणा फिर अंतर, तीसरे में तीन वर्गणा फिर अंतर। यानी जितने यहाँ कितने बार अंतर हुआ है या कितनी बार वर्गणाओं के ग्रुप हुए हैं, ये बताने के लिए हम कहेंगे इतने स्पर्धक इसमें है। तो ये प्रश्न पूछा था, स्थान के प्रकरण में स्पर्धकों का क्या काम है? कुछ ख्याल आता है? थोड़ा थोड़ा आता है। देखो आपका प्रश्न है, जब हम परमाणु ग्रहण करते तो निषेक रचना भी होती है और अनुभाग रचना भी हम बताते हैं। निषेक में तो स्थिति बताई जाती है और ये स्पर्धक रचना है। हाँ, एक निषेक की रचना है। हाँ, तो आपका प्रश्न है कि उन निषेकों में अनुभाग का क्या लेना देना है। तो निषेक तो केवल स्थिति को बताते हैं और हर स्थिति वाले परमाणु जो निषेक है उनमें अनुभागों की वेरिएशंस उनमें भी है। वहां तो अनंत गुणा वृद्धि वाली होगी, अब यहाँ वो बात नहीं बता रहे, यहाँ तो षट्स्थान वृद्धि बता रहे। वहां तो अनंत गुणित प्रमाण में होगी, एक एक समय में अनंत गुणा होता है, यह अनंत भाग वृद्धि समझा रहे हैं। किसी भी स्थान से आगे वाला स्थान जो है अनंत भाग वृद्धि वाला, उसको यहाँ समझा रहे हैं। नहीं नहीं, देखो आप क्या कहते हैं, ये बंद हो रहा है, बंद की बात है, वहां सत्व की बात नहीं हो रही है। हमने देखा था सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में नया बंद किया ना उसने, अभी पहले द्विचरम पर था वो जीव, उसने कुछ परमाणुओं को ग्रहण किया, उसका अनुभाग जितना था सूक्ष्म सांप्राय के अंत समय में गया, नेक्स्ट समय में यानी अंतिम समय में उसने और नए परमाणु ग्रहण किए, उसमें वो ग्रहण किए हुए परमाणु में अनुभाग कितना था? पूर्व से अनंत वे भाग था। उल्टा आते तो अनंत गुणा कहते ना। ये अनुभाग का बंध कितना होता है उसकी बात है, बंद की बात है। यहाँ पर सत्ता में पड़े पड़े उसमें से जितना घट जाएगा उसकी यहाँ चर्चा नहीं है। बंद की अपेक्षा अनुभागों के स्थान बता रहे हैं, सत्ता की अपेक्षा उसके सिमिलर जो होंगे उसको वो बंद स्थान में इंक्लूड कर देंगे और उससे डिससिमिलर होंगे उसको अलग से बताएंगे, क्योंकि सत्ता में पड़े पड़े भी उसमें उत्कर्षण अपकर्षण होता रहता है, परंतु इतना नहीं होगा जैसे यहाँ अनंत गुणा का डिफरेंस पड़ा। उत्कर्षण होकर अनंत गुणा तो नहीं होगा, कुछ बढ़ेगा कुछ कम होगा, उत्कर्षण में कुछ बढ़ेगा। ख्याल में आता है? तो यहाँ क्या बात करें, उस स्पर्धक प्ररूपणा किस लिए की जाती है? तो प्रीवियस स्थान से, अभी जगन्य स्थान छोड़ दो, पूर्व स्थान से उत्तर स्थान में इतना अनुभाग बढ़ा ये तो बता दिया, क्योंकि स्थान हमने मैक्सिमम अनुभाग को ही स्थान कहा, तो वो तो मैक्सिमम अनुभाग बढ़ा। मैक्सिमम अनुभाग बढ़ा यानी उस समय जितने परमाणु ग्रहण किए उसमें उतना अनुभाग वाले मैक्सिमम वाले परमाणु भी उसमें है। तो क्या सभी परमाणुओं में कंटिन्यूअस ऐसे अनुभाग है कि बीच बीच में अंतर भी है? अंतर भी है तो अंतर कैसे कहेंगे, कितने बार अंतर हुआ? तो जितनी बार स्पर्धक हुए, इसलिए वहां पर स्पर्धकों की प्ररूपणा करते हैं, ये बात है।
अभी बात
नहीं वो अनुभाग को गिनना है ना कि इतने अनुभाग वाले परमाणु है, फिर डबल अनुभाग वाले परमाणु है, तीन गुना अनुभाग वाले परमाणु है, परंतु बीच बीच में कुछ तो परमाणु ही नहीं है, परंतु वो सारे अनुभाग हम मैक्सिमम अनुभाग में इंक्लूड कर रहे हैं। पहले ही बता दिया था ना ये मैक्सिमम अनुभाग है, तो उसमें नीचे के अनुभाग समा जाते हैं, ऐसे कहा था, इसीलिए उसको स्थान नाम दिया था। परमाणु एग्जिस्टिंग नहीं है ये बात बताने, हाँ स्पर्धक इसलिए कहा कि हमें मैक्सिमम अनुभाग तक बताना है, मिनिमम अनुभाग पता है और मैक्सिमम अनुभाग पता है, तो क्या बीच बीच में एकदम कंटिन्यूअस है जैसे स्थिति की रचना में होता है, तो नहीं ऐसा नहीं होता, अनुभाग की रचना में बीच बीच में अंतर होता है, वो बात बताने के लिए ये सारी बातें हैं। देखो समाधान फिर पढ़ते, स्थान संज्ञा वाले इन अविभाग प्रतिच्छेदों में, अविभाग प्रतिच्छेदों को ही स्थान कहा था उसमें, इन अविभाग प्रतिच्छेद स्थानों के आधारभूत परमाणु है और इनके नहीं है, पर्टिकुलर अनुभाग वाले परमाणु है और पर्टिकुलर अनुभाग वाले परमाणु नहीं है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए उक्त स्पर्धक प्ररूपणा की जा रही है। बढ़ेंगे आगे, हाँ शंका, उनकी प्ररूपणा सूत्र में क्यों नहीं की गई है, उसका समाधान नहीं, क्योंकि एक श्रेणी के अविनाभावी स्थानों की प्ररूपणा कर चुकने पर इससे ही उन एक श्रेणी में स्थित परमाणुओं और अविभाग प्रतिच्छेदों का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। एक श्रेणी में नहीं, एक पंक्ति में, एक एक से बढ़ते हुए भी बताए ना उन्होंने, तो जहां पर है उसका तो अस्तित्व उसी से सिद्ध होता है कि ये अविभाग प्रतिच्छेद वाले परमाणु है और फिर एक पंक्ति में इतने परमाणु है जिसको हमने वर्गणा नाम दिया था, तो वहां तो परमाणु का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। शंका, समान धन वाले परमाणुओं की प्ररूपणा सूत्र में क्यों नहीं की गई है, समान धन वाले ने समान अविभाग प्रतिच्छेदों वाले परमाणु जिसको हम कहते हैं ना वर्ग को कहते हैं, वो अविभाग प्रतिच्छेदों का समूह वो वर्ग है, जिसमें समान समान अविभाग प्रतिच्छेद है, ऐसे वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं, तो सूत्र में उसको क्यों नहीं बताया, ये बात पूछते हैं। समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि वह कर ही दी गई है, क्योंकि यह सूत्र देशामर्शक है, अतएव प्रदेश प्ररूपणा भी इसी के द्वारा ही सूचित की गई है, उसको प्रदेश प्ररूपणा कहते, प्रदेश परमाणु परमाणुओं की संख्या बताते कि पहली वर्गणा में इतने परमाणु है, दूसरे में थोड़े कम है, तीसरे में थोड़े कम है। देखो एक ये बात भी ख्याल में लेना, अभी भी अभी ये अंतर की भी बात की ना हमने, अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा क्रम से अविभाग प्रतिच्छेद एक एक बढ़ता हुआ, फिर बीच में अंतर हुआ, मान लेते हमने 100 से शुरू करते हैं तो 100 से 101, 2, 3, 4, 5 है, मान लेते 120 तक है, फिर बीच में गैप आया, फिर 200 से शुरू हो जाएगी, 201, 2, 3, 4, 220 तक, फिर बीच में गैप आया, फिर 301, 2, 3, 4, 20 तक, फिर गैप आया, 401, 2, 3, 4, इस तरह से एक एक स्पर्धक हो रहा है। परंतु प्रदेशों की प्ररूपणा कैसे करेंगे, तो पहले स्पर्धक के पहली वर्गणा में प्रदेश सबसे ज्यादा है, दूसरी वर्गणा में एक चय कम है, तीसरी में एक चय कम है, चौथी में एक चम है, अभी यहाँ तो 20 हमने देखे थे, 100 से 120 तक, तो वहाँ कम हुआ, उसके आगे उसी एक चय कम में दूसरे स्पर्धक की पहली वर्गणा को लेना है, यानी अविभाग प्रतिच्छेदों के लिए गैप है, परंतु नंबर ऑफ परमाणु तो एक चय से ही कम होते चले जाएंगे, यानी इनकंटिन्यूअस, यहाँ जो लास्ट वर्गणा थी और अविभाग प्रतिच्छेदों का अंतर लांग कर हम ऊपर की वर्गणा में गए, परंतु वहां प्रदेशों का जो घटता क्रम उसी चय से होगा, एक एक स्पर्धक के प्रतिचय डिफरेंट नहीं होगा, इसको प्रदेश विन्यास कहेंगे, प्रदेश क्रम, जिस क्रम से वो दिए जाते हैं। देखो प्रदेश प्ररूपना भी इसी सूत्र द्वारा सूचित गई। अब हम 147 पृष्ठ पर आ गए। इस कारण जिस प्रकार से जघन्य बंध स्थान में प्रदेश प्ररूपना की गई, हमने देखा था ना पहले जघन्य स्थान में प्रदेश प्ररूपना, यानी पहली वर्गणा में इतने प्रदेश है, फिर दूसरे में थोड़े कम है, तीसरे में और कम है, इस तरह से। अभी भी हमने उसी की बात की, उसी प्रकार से यहाँ भी उसकी प्ररूपणा करनी चाहिए। तो कुछ डिफरेंस होगा कि नहीं है? विशेषता इतनी है कि सत्कर्म परमाणु को छोड़कर, सत्कर्म परमाणु यानी सत्ता में पड़े हुए परमाणु, नवक बंध परमाणु संबंधी जो बंधने वाले हैं, अभी आया, अभी अभी जो नया बंध हो रहा है उसी की बात है ना। ये जो स्थान जो बता रहे हैं अनुभाग बंध के स्थान है, तो बंध की अपेक्षा वाले स्थान है, तो नवक बंध यानी नया बंधने वाला, तो वो जो परमाणु है उस संबंधी निषेकों के विन्यास क्रम की प्ररूपणा। विन्यास क्रम यानी अभी हमने जो देखे थे एक क्षय घटते हुए जो उसको दिए जाते हैं उसको विन्यास क्रम दिखा, उसकी प्ररूपणा उत्कर्षण प्राप्त परमाणुओं के साथ करनी चाहिए। उत्कर्षण होता है तब नए बंध के साथ होता है, सत्ता में पड़े पड़े जो बंध के समान, जिसका क्योंकि जिसको उतना ही अनुभाग हो जाता है ना, सत्ता में पड़े थे अनुभाग थोड़ा था, नया बंध हुआ उसमें अनुभाग ज्यादा है, तो वो जो सत्ता में पड़े हुए परमाणु है इसके साथ आकर जुट जाते हैं। तो उत्कर्षण वाले परमाणुओं को भी उसके साथ करनी चाहिए, यानी जो नया बंध है उसको तो हम एक ऐसे घटते क्रम से कहेंगे, परंतु इसके साथ जो सत्ता में पड़े हुए परमाणु इसके समान हो जाते हैं तो उसको भी यहां इंक्लूड करना पड़ेगा। परंतु सत्व का निषेक विन्यास क्रम नहीं है, सत्ता में पड़े जो निषेक है उसको विन्यास क्रम है ही नहीं है, क्योंकि अपकर्षण व उत्कर्षण द्वारा उसके बंद समय में रचित स्वरूप से रहने का अभाव है। क्या कहते हैं? जैसा बंधा हुआ था वैसे ही रहने का अभाव है, ये बताने। क्या लिखा? बंद समय से रचित स्वरूप से रहने का अभाव है। अभी तो सत्ता वाले कर्म कहते हम, परंतु कभी बंधे थे, तो बंधे थे तो इस क्रम से बंधे थे घटते हुए चय से, परंतु उसी क्रम से नहीं रहते हैं। अभी सत्ता रूप हुई ना तो उसमें वो उत्कर्षण अपकर्षण भी होता रहेगा, तो ये प्रदेशों का क्रम ऐसा सत्ता वालों में ऐसा नहीं रहेगा जैसा बंधा था। टर्न होके अभी जो बंधने वाले के साथ उसकी अपनी अपनी निषेक रचना होगी, परंतु जिस रूप में बंधा था उसमें तो वेरिएशन होने ही वाला है, क्योंकि ये तो चलता ही रहता है, उत्कर्षण वगैरह कुछ ना कुछ चलता रहता है परमाणु में, यानी उसके प्रदेशों की जो रचना है उसमें उलट पुलटता चलता रहता है, अनुभाग भी बढ़ता और घटता रहता है। शंका, एक परमाणु में स्थित अनुभाग, हाँ देखो फिर से दोबारा विशेषता क्या बता रहे हैं, चार लाइन लेते हैं कि सत्कर्म परमाणु को छोड़कर, ये जो विन्यास क्रम प्रदेश क्रम जो लिखा है नीचे की वर्गणा में अधिक परमाणु और ऊपर कम होता है, ये किसकी बात चल रही है? बंधने वालों की। सत्ता में पड़े उसका क्या होता है? तो बंधने के साथ वो उत्कर्षण होता है, कभी उसमें अपकर्षण होता है, अनुभाग घटता बढ़ता है, तो उसमें प्रदेशों का भी विन्यास बदल जाता है। एक बात, अब ये लास्ट जो लाइन लिखी है वहां लिखते हैं कि जिस बंधने के समय में जिस प्रदेशों की संख्या, जिस संख्या से वो हमने रचना दिखाई नहीं, उसी रचना के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ के परमाणु कुछ अनुभाग घटेगा तो हम नीचे के साथ दिखाएंगे उसको, किसी का अनुभाग बढ़ा तो उसको हम परमाणु वहां से उठाकर ऊपर दिखाएंगे, तो ये एक वेरिएशन हो जाएगा उसका। तो जिस क्रम से वो बंधने के समय में थे, बंधने के समय जैसे रचना हुई थी, उसी रचना में वो कायम नहीं रहते हैं, तो परमाणु का अनुभाग घटा तो हम उसको नीचे के वर्गणाओं में दिखाएंगे, ऊपर से नीचे दिए गए ऐसा कहेंगे, निक्षेप हुआ ऐसा कहेंगे, ये ऊपर नीचे ने अनुभाग की अपेक्षा स्थिति की अपेक्षा नहीं लेना यहाँ पर। और यहाँ वर्गणा को ही निषेक कहा है अनुभाग के प्रकरण में, क्योंकि जितनी वर्गणा है ना अनुभाग वाले है उसी में हमने एक एक निषेक घटाया है और निषेक निषेक के प्रतिचय घटता है ऐसा कहेंगे। फिर शंका, एक परमाणु में स्थित अनुभाग की स्थान संज्ञा घटित नहीं होती। अब फिर दोबारा वो उसके पीछे आ गए कि परमाणु को आप स्थान क्यों कहते हो, क्योंकि अनंत स्पर्धकों से व वर्गणाओं के बिना अनुभाग स्थान की संभावना नहीं है। अनंत स्पर्धकों के चाहिए ना, अनंत पद ये ही वगणा ही, दोनों जगह के करना, के तो है वर्गणाओं के लिखा है ना, वैसे स्पर्धकों के बिना, हाँ के करना, से का के करना, क्या कहना है चाहते हैं। अभी अभी हमने देखा था वर्गणाएं होती है, स्पर्धक होते हैं, तो जाके स्थान घटित होता है ऐसा, यानी अंतिम परमाणु को, अंतिम अनुभाग को हमने स्थान कहा। तो अभी भी उसका ऑब्जेक्शन है कि एक परमाणु में जितना अविभाग प्रतिच्छेद है, या एक परमाणु को आप स्थान मत कहो, क्योंकि वहां अनंत स्पर्धक और वर्गणा प्राप्त नहीं है एक परमाणु में, ऐसी शंकाकार की शंका है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि जघन्य बंध स्थान और जघन्य स्पर्धक की जघन्य वर्गणा से लेकर सब वर्गणाएं, सब स्पर्धक और सब स्थान यहां ही पाए जाते हैं। क्या कहते हैं, यहां जो एक परमाणु को एक स्थान कह दिया तो कहते हैं एक परमाणु को मत कहो, क्योंकि उसमें इतनी वर्गणाएं कहां है और इतने स्पर्धक कहां है, क्योंकि एक एक वर्गणा में इतने अनंत वर्ग होते हैं, आप तो एक परमाणु को पूरा ही स्थान कह रहे हो तो घटित नहीं होता। तो कहते हैं वहां तो मैक्सिमम अनुभाग बताया, तो उसके के नीचे जितनी वर्गणाएं स्पर्धक सब कुछ है, जितने स्थान भी नीचे के स्थान है वो सब उसमें इंक्लूडेड है ना। जैसे हमने वहां 51 नंबर देखा तो 51 कहते तो उसमें 8 9 10 11 सब गर्भित है, वही बात यहां बता रहे। देखो, क्योंकि जघन्य बंध स्थान और जघन्य स्पर्धक की जघन्य वर्गणा से लेकर सब वर्गणाएं, सब स्पर्धक और सब स्थान यहां ही पाए जाते हैं। क्योंकि जो हम ऊपर ऊपर के स्थान देखेंगे तो उसके नीचे के सब स्थान उसमें अंतर्भूत है, क्योंकि वो तो बड़ा अनुभाग है तो छोटे अनुभाग उसमें है ही, ऐसा समझ सकते हैं। जिस प्रकार 100 संख्या में यानी 100 में एक आदि संख्याएं गर्भित है, जब हम कहते मेरे पास 100 रुपए है तो उसमें 1 रुपया है कि नहीं, 2 रुपये है कि नहीं, 3 रुपये है कि नहीं, उसी प्रकार यह अनंत भाग वृद्धि स्थान भी है। एक स्थान की चर्चा करें, अनंत भाग वृद्धि वाला स्थान जो बता दिया उसको हमने दूसरा स्थान कहा, और अनंत भाग वृद्धियों में से पहला स्थान कहा, तो उसमें जघन्य स्थान भी इंक्लूडेड है। अब मान लेते वो 51 से बढ़कर 5000 भी हो जाएगा, तो 5000 हुआ तो उसमें 51 गर्भित है, उसमें वो 8-9 भी गर्भित है, सब कुछ उसमें गर्भित है। तो आगे वाले स्थान में, अनंत भाग वृद्धि वाले स्थान में जघन्य स्थान भी गर्भित है, उसके जघन्य स्पर्धक के जघन्य वर्गणा से लेकर सब कुछ गर्भित है। और उसके लिए दृष्टांत दिया वो 100 का। उसी प्रकार यह अनंत भाग वृद्धि स्थान भी अपनी कुक्षी के भीतर यानी अपने में समस्त नीचे के स्थानों को रखने वाला है, इसलिए पूर्वोक्त दोष का प्रसंग नहीं आता। दूसरी एक बात बता रहे, मिथ्यात्व प्रकृति का अनुभाग चतुस्थानीय है, यह सूत्र सिद्ध है। सूत्र में ही बताया था कि मिथ्यात्व का अनुभाग कितना है, चतुस्थानीय। मिथ्यात्व प्रकृति कौन सी है, सर्वघाती है। उसके स्पर्धक कितने होते हैं? अनंत होते हैं। नाम बताओ नाम बताओ ना। लता वाले को मिथ्यात्व कहते नहीं है। दारू का बहुभाग अस्थि और शैल तो तीन स्थान हुए ना, तो उसको चतुस्थानीय सूत्र में बताया। इसका अर्थ क्या है? जहां मैक्सिमम अनुभाग है उसमें नीचे के स्थान गर्भित है, ऐसा समझना क्या है ना, ये लता वाले उसमें है ही नहीं है, फिर जो बड़ा है उसमें वो नीचे वाले है, ऐसा समझना। इस तरह से उसको समझा रहे। देखो अभी दलील दे रहे, प्रूव कर रहे। मिथ्यात्व प्रकृति का अनुभाग चतुस्थानी, यह सूत्र सिद्ध है, सूत्र में ही बताया। उसकी चतुस्थान संज्ञा घटित नहीं होती, अभी जो हमने डिस्कस किया ना, क्योंकि सर्वघाती प्रकृति होने से उसके एक स्थान का अभाव है। एक कौन सा स्थान का अभाव है? लता भाग वाले स्पर्धक उसमें पाए ही नहीं जाते हैं, परंतु दारू नाम के स्पर्धक तो है वहां पर है? अब सम्यक मिथ्यात्व तो प्रकृति के अनुभाग के भी द्विस्थान रूपता योग्य नहीं है। सम्यक मिथ्यात्व तो के उसमें कौन से अनुभाग होते मालूम है आपको? सम्यक मिथ्या तो सर्वघाती प्रकृति है। देखो देखो, मिथ्या तो प्रकृति में कितने थे? दारू का बहुभाग, ये दारू का एक भाग यहाँ छोड़ देना, लता वाले के साथ देशघाती में। दारू का बहुभाग अस्थि और शैल। अब ये दारू का जो एक भाग रहा, एक भाग उसमें तो जाना ही नहीं, ये बहुभाग के ऊपर का अनंत वा भाग लेना। फिर दोबारा सर्वघाती में से नीचे में नीचे का एकदम दारू का नीचे का अनंत वा भाग है, वो तो देशघाती है, उसको तो हमने छोड़ दिया, वो तो देशघाती हो जाएगा। अभी इसको देशघाती मत बनाना। अब जो दारू के बहुभाग है उसका अनंत वा भाग करना। फिर अनंत वा भाग उतना है सम्यक मिथ्यात्व, वो है तो सर्वघाती है, देशघाती बन जाएगा तो उसको हम सम्यक प्रकृति कहेंगे। तो ये एक स्थानीय है कि द्विस्थानीय है? एक स्थानीय हुआ ना, दारू के अनंत विभाग में से वो अनंत बहुभाग में से वो छोटा पार्ट है, तो उसके दारू वाले ही उसमें है, अन्य कुछ है ही नहीं है, फिर भी उसको द्विस्थानीय प्रकृति कह देते हैं। क्यों? इसके नीचे के उसमें इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि नीचे से वो ज्यादा है ना। इस उदय की बात, उदय होता है नहीं होता, वो हमेशा सर्वघाती ही है, सम्यक्त्व का पूरा ही घात करती है। उसका प्रतिपक्षी कौन है? सम्यक्त्व का पूरा घात करती है, इसलिए उसका सर्वघाती कहते हैं। जो दर्शन मोह की प्रकृति सम्यक्त्व का पूरा घात करती है उसको सर्वघाती कहते हैं। तो ये दो है, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व। और जो प्रकृति घात नहीं करती, उसके सम्यक्त्व के साथ बनी रहती है, तो उसको कहेंगे सम्यक प्रकृति, जो देश घाती है। तो सम्यक मिथ्यात्व सर्वघाती प्रकृति ये सिद्ध हुआ। अब उसके स्पर्धकों का नाम क्या है? वो दारू वाले स्पर्धक हैं। तो दारू वाले होकर भी उसको द्विस्थानीय क्यों कहेंगे? क्योंकि दारू वाला आगे वाला स्थान है, उसमें नीचे का अनुभाग गर्भित कर देकर उसको द्विस्थानीय कहेंगे। जैसे मिथ्यात्व दारू वाला पन द्विस्थान किसको कहेंगे? लता और दारू को मिलकर द्विस्थान कहेंगे। उसमें लता भाग वाले स्पर्धक है ही नहीं है, फिर भी अनुभाग ज्यादा है, तो उसको द्विस्थानीय कहा। यही बात यहां बता रहे हैं, आगे के स्थान में नीचे के स्थान गर्भित है, ऐसा कह रहे हैं। ये तो दृष्टांत दे रहे हैं वहां पर। अश्विन भाई को कुछ कंफ्यूजन है अभी? देखो किसी के पास लाख है, हम कहते हैं लाख रुपए है, सच उदय की बात मत सोचो आप। लता सम्यक प्रकृति लता भाग रूप ही है और दारू का एक भाग रूप है, वो देशघाती प्रकृति है, यानी उसमें देशघाती प्रकृति यानी स्पर्धक ही उसके देशघाती है। अन्य देशघाती प्रकृतियां कैसी होती है, उसमें सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं और देशघाती स्पर्धक भी, वैसा ये नहीं है, क्योंकि वो देशघाती स्पर्धक ही है उसमें। उदय चल रहा है, हाँ। मोनी है, ये मोनी की प्रकृतियां है ना, बारहवें में भी नहीं है। ये तो क्षय सम्यक तो होते ही सब खत्म हो जाता है। केवल ज्ञान के साथ मत कंपेयर करो, मिथ्यात्व के साथ कंपेयर करो इसको। देखो मिथ्यात्व में दारू अस्थि और शैल होते हुए भी उसको चतुस्थानीय कहा, इतना ही ले लो। और जो सम्यक मिथ्यात्व है उसमें वो दारू भाग वाले भी लोअर मोस्ट टाइप के हैं, सर्वघाती है, फिर भी उसको द्विस्थानीय कहा। अब आगे पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा। देखो नीचे से पांचवी लाइन, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के अनुभाग के भी द्विस्थान रूपता योग्य नहीं है, फिर भी कहा है ना उसको योग्य नहीं है, क्योंकि उसके एक दारू समान स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों का अभाव है। यहां तक तो समझ में आया। अब देशघाती जघन्य स्पर्धक के जघन्य वर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेद से लेकर एक दो तीन व चार स्थान संयुक्त सब अविभाग प्रतिच्छेद मिथ्यात्व के उत्कृष्ट स्थान में विद्यमान है। मिथ्यात्व का उत्कृष्ट स्थान है वो शैल वाला भी, उसमें भी वो मैक्सिमम वाला लिया तो उसमें वो सारे अनुभाग विद्यमान है, जैसे लाख में एक रुपये भी विद्यमान है, इस तरह से लेना। उसमें जघन्य स्पर्धक के जघन्य वर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेद से लेकर लिखा, तभी तो मिथ्या तो प्रकृति अनंत गुणा हीन होकर वो सम्यक प्रकृति रूप हो जाती है। दर्शन मोहनी की प्रकृति है ना, वो परमाणु तो वही के वही है, उसी में अनुभाग गड़ गया था। तो इसलिए चारों स्थान संयुक्त सब अविभाग प्रतिच्छेद मिथ्यात्व के उत्कृष्ट स्थान में विद्यमान है, अतएव यदि उसके चतुस्थान रूपता कही जाती है तो, ये तो दृष्टांत हुआ, मिथ्यात्व में दारू अस्थि और शैल होते हुए भी उसको चतुस्थान कहते हैं, क्योंकि जघन्य स्पर्धक के यानी जघन्य स्थान के जघन्य स्पर्धक के जघन्य वर्गणा से लेकर सभी अविभाग प्रतिच्छेद उसके अंतर्भूत है। अब ये दृष्टांत हुआ ना, उसी तरह देशघाती स्पर्धक ऐसा मत कहो, परंतु उतना अनुभाग सब उसमें गर्भित है ऐसा कहना। यहाँ स्थानों की चर्चा चल रही है ना, तो कही जाती है ना स्थान रूपता कही जाती है, चार स्थान वहां चार स्पर्धक चार टाइप के स्पर्धक नहीं है, फिर भी कहते हैं हमको चतुस्थान वाला कह देते हैं। तो एक स्थान में, अब ये मूल पर आए क्योंकि अनंत वा भाग बढ़ गया है, अनंत भाग वृद्धि होकर आगे वाला स्थान आया है, तो एक स्थान में नीचे के समस्त स्थान स्पर्धक और वर्गणाओं के अस्तित्व को क्यों नहीं कहते, क्योंकि उससे यहां कोई विशेषता नहीं है, यानी जैसे वहां पर बात है वैसे यहां पर भी ऊपर के स्थान में अधिक वाले अनुभाग स्थान में नीचे के स्थानों की गर्भितता हम कह सकते हैं। ये दृष्टांत समझो तो ये भी ख्याल में आएगा। अब आगे, यह अनंत भाग वृद्धि, अनंत वा भाग जो बढ़ गया है ना, पहले कोई अन्य बंध था और अभी इतना अनंत वा भाग एक्स्ट्रा अविभाग बंध रहा है, तो यह अनंत भाग वृद्धि उत्कर्षण से नहीं होती, केवल बंध से ही होती है। किसी के ये इतना अनंत अनंतवा भाग बढ़े, इतना अनुभाग एकदम बढ़ नहीं जाता उत्कर्षण के साथ, थोड़ा बढ़ेगा यथायोग्य, परंतु इतनी वृद्धि वो बंद के साथ ही हो सकती है। यथा जघन्य कषाय उदय स्थान प्रक्षेप से अधिक अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान से वह जिस किसी भी योग से वृद्धिंगत हो, बंद में अनंत भाग वृद्धि स्थान उत्पन्न होता है। यह अनंत भाग वृद्धि कैसे होगी? तो कषाय भी बढ़ेगा, तो कषाय उदय स्थान प्रक्षेप कहा, उसका प्रक्षेप, और अनुभाग बंद अध्यवसाय स्थान में भी अधिकता हो गई, और वहां जो कोई पॉसिबल योग होगा उसको लेना है। अब इस नवक बंध की स्पर्धक रचना को करते हैं वह इस प्रकार है, ये जो नया बंध है उसकी स्पर्धक रचना बताएंगे। जघन्य स्थान से अनुभाग में अधिक परमाणुओं को समय प्रबंध में से कम करके पृथक स्थापित कर फिर जघन्य स्थान के समान शेष सब परमाणुओं को ग्रहण कर रचना के करने पर जघन्य स्थान की जघन्य वर्गणा से लेकर उसी की उत्कृष्ट वर्गणा तक इनमें समान धनयुक्त होकर सब गिरते हैं। ये नवक समय प्रबद्ध जो हुआ है तो पहले जघन्य स्थान वाला सत्ता में पड़ा है, अब जो नए बंधने वाले जो है वो तो हमने कहा अधिक अनुभाग वाले बंधे, परंतु अधिक अनुभाग वाले क्या सभी अनंत परमाणु बंधे क्या है? तो जो बंध हुआ उसमें तो पहले जो जघन्य स्थान के समान बंध वाले भी कुछ परमाणु उसमें हो गए, तो जघन्य स्थान की जघन्य वर्गणा में जैसे थे उतने ही अनुभाग वाले ये इसके साथ भी बंधेंगे, तो उसको उसके साथ दिखाएंगे ना हम। तो देखो क्या कहते हैं, जघन्य स्थान से जो अधिक अनुभाग वाले हैं ना, अभी हमने एक परमाणु पुंज ग्रहण किया, नया बांधा, तो उसमें तो अनंत परमाणु है, तो कुछ परमाणु तो नया बंध वाले हैं और कुछ परमाणु है वो जघन्य स्थान के समान बंध वाले, तो ये नया अधिक अनुभाग वाले उनको हमने अलग रखा, और जो प्रीवियस जघन्य स्थान के समान अनुभाग वाले हैं उसको हम उसके समान दिखाएंगे। देखो फिर पढ़ते हैं इसको, जघन्य स्थान से अनुभाग में अधिक परमाणुओं को समय प्रबद्ध में से कम करके पृथक स्थापित करना, ये हमने राउंड किया ना, इसमें से ये अधिक अनुभाग वाले उसको पृथक स्थापित किया, और फिर जघन्य स्थान के समान शेष सब परमाणुओं को ग्रहण कर रचना के करने पर, उसकी रचना करेंगे तो कैसी होगी? जघन्य स्थान की जघन्य वर्गणा से लेकर उसी की उत्कृष्ट वर्गणा तक इनमें समान धनयुक्त होकर सब गिरते हैं। पहले समय में बंद किया था उसमें भी ये स्पर्धक, दूसरा स्पर्धक, तीसरा स्पर्धक, चौथा स्पर्धक, ऐसी रचना थी। अब इनमें से जिन जिन परमाणुओं में अधिक अविभाग प्रतिच्छेद है उसको तो हमने अलग ग्रुप बनाएंगे उसका, और जो उसके समान अविभाग है तो जो पहली वर्गणा के समान है परमाणु तो वहां गिरेंगे ने, अभी उसको दिखाएंगे ना हम, ये गिरना फिरना कुछ नहीं है तो इनके समान वो परमाणु है तो उनको हम यहाँ पर दिखाएंगे, उनमें भी इसी तरह से जघन्य स्थान जैसे रचना है, तो ये सब कुछ परमाणु जघन्य स्थान जैसे है, उसकी वर्गणा के जैसे है, समान धने ने समान अविभाग प्रतिच्छेद उसमें पाया जाता है, तो वहां पर उसको दिखाना, रचना दिखा रहे हैं ना। इसलिए फिर कम किए जो अनंत परमाणु है, क्यों कम किए थे? क्योंकि उनमें अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा था, ये ग्रुप, एक ग्रुप तो जघन्य स्थान जैसा है तो उसको तो हमने जघन्य स्थान के जैसे बताया, अब ये जो कम किया दूसरा जो ग्रुप है उसमें भी अनंत परमाणु है, अब उसका क्या होगा? उनमें से प्रक्षेप रूप जघन्य स्पर्धक प्रमाण परमाणुओं को ग्रहण कर उन्हें यथाविधि जघन्य स्थान संबंधी अंतिम स्पर्धक के उपरिम देश के ऊपर स्थापित करने पर प्रक्षेप रूप प्रथम स्पर्धक उत्पन्न होता है। ये जघन्य हमने इतना स्थान देखा था। अब इनमें से अब ये थोड़ी जघन्य स्थान थोड़ा नीचे दिखाते हैं, यहाँ उसके कुछ स्पर्धक वर्गणाएं वगैरह सब पूरी हो गई। अब यहाँ का प्रक्षेप लिया है, नहीं अभी इसमें से जो अनंत भाग उससे ज्यादा है उसकी चर्चा करेंगे। इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनुभाग है तो इसका जघन्य से लेकर इसके मैक्सिमम तक ये पूरा प्रक्षेप हो जाएगा, ये प्रक्षेप वाले परमाणु। तो उसमें जो जघन्य स्पर्धक संबंधी जो है उसको हम इसके ऊपर दिखाएंगे। इसमें ऊपर के देश में नहीं, इसमें कुछ अंतर छोड़कर यहाँ इसका जघन्य स्पर्धक होगा। यहाँ भी अंतर छूटेगा ना, जैसे पहले में स्पर्धक स्पर्धक में बीच में अंतर था, तो यहाँ भी बड़ा अंतर छूटकर फिर इसके भी जघन्य स्पर्धक दिखाएंगे। देखो उनमें से ये फिर पढ़ती हूँ, फिर कम किए गए जो अनंत परमाणु है उनमें से प्रक्षेप रूप जघन्य स्पर्धक प्रमाण परमाणुओं को ग्रहण कर, प्रक्षेप रूप यानी अभी जो नए उसमें ऐड करेंगे ना उतने परमाणुओं को जघन्य स्पर्धक, क्यों अभी जो नया प्रक्षेप है उसमें अभी जो अधिक अनुभाग वाले हैं उनमें से जो मिनिमम वाले हैं उसको हम जघन्य स्पर्धक कहेंगे। अब उसको ये पहले वाले जो पूरा स्थान था उसके ऊपर इसको रचना करेंगे, उसको उन्हें यथाविधि जघन्य स्थान संबंधी अंतिम स्पर्धक के उपरिम देश के ऊपर स्थापित करने पर प्रक्षेप रूप प्रथम स्पर्धक उत्पन्न होता है। यहाँ जो हमने स्पर्धक बताए थे वो जघन्य स्थान के स्पर्धक थे, अभी यहाँ ये इसमें से ये प्रक्षेप रूप प्रथम स्पर्धक यहाँ हो जाएगा, प्रक्षेप में से प्रथम स्पर्धक। फिर उसी के द्वितीय स्पर्धक प्रमाण परमाणुओं को ग्रहण कर प्रक्षेप रूप प्रथम स्पर्धक के ऊपर अंतर को लांघ कर स्थापित करने पर, क्योंकि वर्गणाओं के बाद अंतर होता है, उसके बाद ये दूसरा स्पर्धक, फिर अंतर को लांघ कर तीसरा स्पर्धक, द्वितीय स्पर्धक उत्पन्न होता है। इस प्रकार बार बार ग्रहण करके पृथक स्थापित परमाणुओं के समाप्त होने तक स्पर्धक रचना करनी चाहिए। इस तरह से इसकी भी स्पर्धक रचना हो जाएगी एडिशनल। इसमें कैसे नीचे के जो पूर्व स्थान थे उसके समान भी परमाणु हैं और एडिशनल भी हैं। हाँ, आपका कहना है कि मिनिमम पॉसिबल अनुभाग वाले भी परमाणु उसके साथ रहेंगे। हाँ, अभी तो आगे वाले स्थान में तो है, दो इमीडिएट नेक्स्ट स्थान की बात चल रही है ना यहाँ पर। हाँ, कितने गुना वृद्धि होती है, अभी अनंत वा भागी वृद्धि हुई है उसमें तो ये समझा रहे हैं। अभी अनंत गुना जहाँ है वहाँ वैसे रहते हैं कि नहीं, वो तो आगे चलकर बात आएगी। अभी तो हम अनंत भाग वृद्धि की बात चल रहे हैं, तो उसमें तो उसके समान भी परमाणु है और आगे के अधिक वाले भी परमाणु, उसकी बात अभी यहाँ सोचना हमें। इस प्रकार बार बार ग्रहण करके पृथक स्थापित परमाणुओं के समाप्त होने तक स्पर्धक रचना करनी चाहिए। यहाँ एक परमाणु में स्थित उत्कृष्ट अनुभाग का नाम स्थान है। अभी ऐसी जो रचना की तो जो अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा में एक परमाणु होगा उसमें मैक्सिमम पॉसिबल अनुभाग है उसको हम स्थान कहेंगे। फिर भी प्रदेश रचना या ऐसे अनुभाग को समझने के लिए कैसे बीच बीच में अंतर है उसको समझने के लिए स्पर्धक वगैरह सब कहेंगे, फिर भी ये सब मिलकर स्थान नहीं कहते, क्योंकि ये अनंत अलग अलग द्रव्य है, इतने द्रव्यों का मिलकर स्थान नहीं होता है। ये बात पहले भी हमने चर्चा की थी। इसमें से जघन्य स्थान को कम कर देने पर शेष वृद्धि होती है। अब इसमें से जघन्य स्थान को कम, जघन्य स्थान भी किसको कहा था, वो भी एक परमाणु के अनुभाग को कहा था, और यहाँ भी मैक्सिमम अनुभाग वाला परमाणु लिया। यहाँ के अनुभाग में से वो जगन्य स्थान को कम करेंगे हाँ, तो वो वृद्धि का प्रमाण आएगा, इतनी वृद्धि हुई कहेंगे हम। इसका प्रमाण सब जीव राशि का जगन्य स्थान में भाग देने पर जो लब्ध हो उतना मात्र है। जगन्य स्थान यानी यहाँ का अनुभाग, ये अनंत में होता है, उसको जीव राशि की जो संख्या है अनंत उससे भाग देंगे, जो संख्या आएगी उसी में ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी को कहते हैं अनंत भाग वृद्धि। अनंत से भाग देकर जो संख्या आएगी वो उसी में मिला देना, अनंत भाग वृद्धि। अनंत गुणा वृद्धि में डायरेक्ट अनंत से गुणा करते हैं, उसकी बात यहां नहीं हो रही, अनंत भाग वृद्धि की बात चल रही। तो वो कौन से वाले अनंत से भाग देते हैं? तो ये जीव राशि वाला अनंत। अब प्रथम अनंत भाग वृद्धि स्थान को, प्रथम अनंत भाग वृद्धि का स्थान है ना, ये जो अभी हमने चर्चा की है, जगन्य स्थान के बाद अनंत भाग वृद्धि वाला स्थान लिया, वो अनंत भाग वृद्धियों के जितने स्थान होंगे उसमें से उसका पहला नंबर था, तो उसको कहा प्रथम अनंत भाग वृद्धि स्थान। उसको सब जीव राशि से खंडित कर जो लब्ध हो उसे प्रति राशिभूत प्रथम अनंत भाग वृद्धि स्थान में मिलाने पर द्वितीय अनंत भाग वृद्धि स्थान होता है। अपनी भाषा में जगन्य से तीसरा नंबर आया उसका। देखो अभी जो हमने इतनी देर तक चर्चा की तो दूसरा स्थान था जिसमें अनंत भाग वृद्धि हुई थी, परंतु अनंत भाग वृद्धि वाले स्थानों में उसका पहला नंबर था। अब यहां जो अनुभाग था उसके अनंतवा भाग करना, पहले वाला नहीं, इसका अनंतवा भाग करके उसको मिलाना, तो आगे वाला अनंत भाग वृद्धि स्थान का दूसरा स्थान आ जाएगा। बराबर है ना अरविंद भाई? यहां आगे आगे जो नंबर आता है ना अनंत का, उसका अनंतवा भाग करना है। ये जो हमने अवगाहना में जो देखी थी षट स्थान वृद्धि, षट स्थान वृद्धि भी दो अपेक्षा से करते हैं हाँ? एक एक बढ़कर नहीं, उसमें क्या कहते हैं षट स्थान वृद्धि, जगन्य को कांस्टेंट रखो और जगन्य से कितना बढ़ा कितना बढ़ा कितना बढ़ा, तो इसमें जगन्य से अनंतवा भाग बढ़ा अनंतवा भाग बढ़ा अनंतवा भाग बढ़ा, और फिर जैसे एक एक बढ़कर अभी बहुत बढ़ गए तो ये इसके कंपैरिजन में कितने बढ़े, तो हम कहते हैं असंख्यात भाग बढ़े। जैसे हम एक एक रुपए की वृद्धि करते कितना बढ़ा, तो दसवा भाग बढ़ा, सौवा भाग बढ़ा, ये सौ गुना बढ़ा, हजार गुना बढ़ा, तो एज कंपेयर टू ओरिजिनल वैल्यू। तो ये असंख्य सॉरी षट स्थान वृद्धि भी दो पद्धति से डिस्क्राइब करते हैं, हाँ एक जगन्य से ही उसकी कंपैरिजन करती है, जो हमने अवगाहना के स्थान में देखे थे, एक एक प्रदेश से बढ़ते हुए अवगाहना के स्थान देखे थे। और एक ऐसी होती है कि अभी ये दूसरी वैल्यू है ना, दूसरा स्थान आया, फिर अनंत भाग वृद्धि, वहां का जो अनंत का बड़ा प्रोपोर्शन है उसको फिर अनंत के भाग देंगे, फिर उसके आगे वाला अनंत भाग वृद्धि आए प्रीवियस स्थान से। आपने कल परसों प्रश्न पूछा था कि एक एक से बढ़ता है, इसको ही हम अनंत भाग या अनंत असंख्यात भाग कहते हैं, तो वो कहने की भी दो पद्धति होती है। ये अभी मेरा वही विषय चल रहा है, उसमें लिखा है ये जगन्य के साथ उस जगन्य की अपेक्षा इसको कहा है, ऐसे लिखा है वहां पर, और कहीं कहीं पर यानी जब अभी हम यहां देख रहे हैं तो प्रीवियस स्थान जो है उसके साथ कंपेयर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, यानी उसका प्रोपोर्शन हर बार बदलेगा। जगन्य के साथ कंपेयर करें तो हर बार वो एक एक से बढ़ेगा शायद। देखो फिर इसको पढ़ते, अब प्रथम अनंत भाग वृद्धि स्थान को सब जीव राशि से खंडित कर, अभी खंड करने के लिए सब जीव राशि रखा है, जो लब्ध हो उसे प्रतिराशिभूत प्रथम अनंत भाग वृद्धि स्थान में मिलाने पर द्वितीय अनंत भाग वृद्धि स्थान होता है। पूर्व स्थानांतर से यह स्थानांतर अनंतवे भाग से अधिक है। कितने मात्र से अधिक है? सब जीव राशि के वर्ग का जघन्य स्थान में भाग देने पर, देखो क्या कहते हैं, हमने दूसरे स्थान को जीव राशि से भाग दिया था, तो पहले स्थान के कंपेयर करना है तो पहले राशि को, पहले स्थान के राशि को दो बार जीव स्थान से भाग दिया है, यानी जीव राशि के वर्ग से भाग दिया है। पहले स्थान को जीव राशि के भाग देने पर दूसरा स्थान आया था, और दूसरे स्थान को जीव राशि के भाग, उसका भाग देने पर जो वैल्यू एडिशनल वैल्यू आई वो तीसरे स्थान की बात आई। तो इसलिए कहते पहले स्थान को जीव राशि के वर्ग के भाग देंगे वर्ग से तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। वो उसमें मिला दिया है, वो राशि बड़ी है और भागाकार का वो तो वही प्रमाण है, भागाकार का प्रमाण वही है। देखो पूर्व स्थानांतर से ये हो गया, सब जीव राशि के वर्ग का जघन्य स्थान में भाग देने पर जो लब्ध हो उतने मात्र से अधिक है। अनंतर अधस्तन स्थान संबंधी, अनंतर अधस्तन स्थान यानी इमीडिएट पूर्व का स्थान, अनंतर यानी वो बाद पश्चात वाले भी लगाते हैं और पूर्व के लिए भी, अनंतर यानी अंतर बिना का आगे वाला, तो अनंतर अधस्तन कहा, इमीडिएट नीचे वाला। अनंतर अधस्तन संबंधी प्रक्षेप रूप स्पर्धक के अंतर से, इस प्रक्षेप के स्पर्धक का अंतर अनंतवे भाग से अधिक है। देखो पहले हमने क्या देखा था, यहाँ जो स्पर्धकों के बीच में अंतर था उससे जो प्रक्षेप वाला अंतर वो ज्यादा था, कितना, अनंतवे भाग से। अभी यहाँ वाला जो हमने पूर्व स्थान अनंत भाग वृद्धि का देखा था और ये अनंत भाग वृद्धि का दूसरा स्थान आ गया, तो उसमें वो स्पर्धक का अंतर कितना बढ़ा, अनंतवे भाग से बढ़ गया। क्योंकि पूर्वोक्त विभज्यमान राशि से इस समय की विभज्यमान राशि अनंतवे भाग से अधिक है। आपने जो कहा था ना, विभज्यमान यानी भाज्य जो था, पहले किसको भाग दिया था, जघन्य स्थान को भाग दिया था, अब किसको भाग दिया है, द्वितीय स्थान को, जो पहले स्थान से अधिक है, अनंत विभाग से अधिक है, परंतु भागाकार तो उतना ही रहा, तो डिफरेंस कहाँ हो गया, वो अंतर बढ़ गया है, यहाँ पर अंतर बढ़ेगा बीच वाला। तथा अनंतर अधस्तन प्रक्षेप स्पर्धक शलाकाओं से इस समय की प्रक्षेप स्पर्धक शलाकाएं तुल्य है। क्या कहना चाहते हैं, अनंत वहां भाग वहां बढ़ गया था ना, तो जितने स्पर्धक वहां बने थे उतने ही स्पर्धक अब यहां पर है, स्पर्धकों में बढ़ोतरी नहीं हुई, स्पर्धक तो उतने ही रहे, अंतर बढ़ गया, क्यों, अनुभाग तो अनंत वहां भाग बढ़ गया, अनुभाग इतना बढ़ा और स्पर्धक उतने ही रह गए, तो बीच वाला अंतर बढ़ गया। शंका, वो बिंदी लगाना शक्य ऊपर, हाँ, प्रक्षेप स्पर्धक शलाकाओं की तुल्यता किस प्रमाण से जानी जाती है, यानी वहां जो प्रक्षेप में जो स्पर्धक थे, देखो बंध में कितने थे उसकी बात नहीं है, वो बंधने में तो जघन्य स्थान जितने भी थे और ऊपर भी नए भी थे, तो ये प्रक्षेप एडिशनल जितने स्पर्धक बने और यहां जो एडिशनल स्पर्धक बनेंगे तो उसका प्रमाण सेम है, आप कैसे कह सकते हो, ये प्रश्न है, प्रक्षेप की बात चल रही ना, तो अनंत प्रक्षेप स्पर्धक शलाकाओं की तुल्यता किस प्रमाण से जानी जाती है, तो कहते सब अनंत भाग वृद्धियों की स्पर्धक, सॉरी प्रक्षेप स्पर्धक शलाकाएं परस्पर समान हैं, असंख्यात भाग वृद्धि स्थानों संबंधी प्रक्षेपों की भी स्पर्धक शलाकाएं परस्पर में तुल्य है, संख्यात भाग वृद्धि स्थानों संबंधी प्रक्षेपों की स्पर्धक शलाकाएं भी परस्पर तुल्य है, इसी प्रकार संख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात गुणवृद्धि और अनंत गुणवृद्धि संबंधी स्पर्धक शलाकाओं की भी समानता बतलानी चाहिए। स्पर्धक शलाका यानी एडिशनल स्पर्धक जो बने उसको स्पर्धक प्रक्षेप स्पर्धक शलाका कहें। तो पहले जो जगन्य स्थान से दूसरा स्थान हुआ था ना, जो अनंत भाग वृद्धि का पहला स्थान, उसमें जितने प्रक्षेप था यानी जो इतने एडिशनल था, उसमें जितने एडिशनल स्पर्धक बने थे, दूसरा प्रक्षेप हुआ उसमें भी उतने ही स्पर्धक एडिशनल हो जाएंगे, तीसरे में उतने ही एडिशनल स्पर्धक बढ़ेंगे। इस जिन वचन से उनकी तुल्यता जानी जाती है। तो यहां कहते हैं अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, इनमें प्रक्षेप स्पर्धक शलाकाओं का प्रमाण समान होगा। अभी अनंत भाग वृद्धि से निकलकर असंख्यात भाग वृद्धि होने लगे, असंख्यात से भाग देकर जो कुछ होगा, तो वहां के जो प्रक्षेप स्पर्धक शलाकाओं का नंबर है, नंबर ऑफ प्रक्षेप स्पर्धक, तो वो असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि सबके लिए वो उसका प्रमाण समान है। सब में समझना, संख्यात भाग वृद्धि हो या संख्यात गुण वृद्धि हो, असंख्यात गुण वृद्धि हो, अनंत गुण वृद्धि हो, वहां जो प्रक्षेप स्पर्धक शलाका है वो आपस में समान होती है। जो कोई वृद्धि का है ना, विशिष्ट वृद्धि है, उसकी अपने अपने वो स्पर्धक शलाका जो है प्रक्षेप वाली, उसका प्रमाण समान है। प्रक्षेप यानी एडिशनल की बात है, अथवा वह अनंत भाग वृद्धियों में अधसन प्रक्षेप स्पर्धकों के अंतर से उपरिम प्रक्षेप स्पर्धकों का अंतर अनंतवे भाग से अधिक है, इस वचन से जानी जाती है। क्या कहते हैं, अभी जो हमने पढ़ा ना, अनंत भाग वृद्धि हो रही है, तो अनंत भाग वृद्धि में नीचे जितने स्पर्धक थे उससे अभी प्रक्षेप में जितने स्पर्धक बन गए, तो उसमें अंतर ज्यादा है कहा, स्पर्धक ज्यादा है नहीं कहा, अंतर बढ़ गया वहां पर, नंबर ऑफ स्पर्धक सेम है। शंका, स्पर्धक शलाकाओं के विसदृश होने पर अनंतवे भाग से अधिकता कैसे घटित नहीं होती है? क्या कहते हैं, स्पर्धक शलाका सेम ही क्यों कहते हो आप, विसदृश होगी तो अनंत भाग वृद्धि वाले वो कैसे घटित नहीं होती है क्या, ऐसा उसका प्रश्न है। समाधान, इसका उत्तर कहते हैं, अनंतर अधस्तन अनंत भाग वृद्धि स्थान में नीचे के जो है ना, अनंतर अधस्तन है पूर्व का वृद्धि स्थान में एक अधिक सब जीव राशि का भाग देने पर स्थानांतर होता है, स्थानों का अंतर, आगे वाला स्थान निकालने के लिए जीव राशि का भाग दिया था, अब ये स्थान का अंतर निकालने के लिए एक अधिक किया, फिर उसी स्थानांतर को स्पर्धक शलाकाओं से खंडित करने पर एक खंड प्रमाण स्पर्धकांतर होता है। स्पर्धकों में अंतर कितना होता है, तो स्थानांतर को स्पर्धक शलाकाओं से भाग देना, स्थान के अंतर को स्पर्धक शलाका से भाग देना, तो ये स्पर्धकों का अंतर होगा। फिर उसी स्थान में सब जीव राशि का भाग देने पर ऊपर का स्थानांतर होता है, एक स्थान में जीव हमने थे आगे आगे का जीव स्थान, आगे आगे का स्थान निकालना है तो नीचे नीचे के स्थान को जीव राशि का भाग देगा, फिर उस स्थानांतर में उपरिम स्पर्धक शलाकाओं का भाग देने पर वहां का स्पर्धकांतर होता है, अब पूर्व की स्पर्धक शलाकाओं से उपरिम स्थान की स्पर्धक शलाकाएं यद्यपि एक अंक से अधिक होती है तो भी पूर्व भागहार से उपरिम स्थान संबंधी स्पर्धकांतर का भागहार चूंकि अनंतवे भाग से अधिक है, अतएव अधस्तन स्पर्धकांतर से उपरिम प्रक्षेप स्पर्धकांतर अनंतवे भाग से हीन होना चाहिए, परंतु ऐसा है नहीं क्योंकि वैसा स्वीकार नहीं किया गया है। इस कारण सब प्रक्षेपों की स्पर्धक शलाकाएं सजाती प्रक्षेप, सजाती यानी अनंत भाग वृद्धि होगी, अनंत भाग वृद्धि हो तो उसको सजाती कहा, असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि होगी तो वो सजाती हो गई, सजाती प्रक्षेप स्पर्धक शलाकाओं के समान है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। शेष कथन पहले के ही समान कहना चाहिए। सब जीव राशि का द्वितीय अनंत भाग वृद्धि स्थान में भाग देने पर, ये दूसरे तक आए ना, अभी हम दूसरे को भाग देने पर, जो लब्ध हो उसे उसमें ही प्रतिराशि करके मिलाने पर, प्रतिराशि ने किसमें मिलाना वो भाग, तो जो द्वितीय स्थान था उसको ही मिला, उसको इसमें ही मिलाना। तृतीय अनंत भाग वृद्धि स्थान होता है, यह स्थानांतर अनंतर अतीत स्थानांतर की अपेक्षा अनंतवे भाग से अधिक है। हमने देखा ना अनंतवा भाग अधिक है, आगे आगे वाला, इसीलिए उसको अनंत भाग वृद्धि कह रहे हैं। पूर्व स्थान के अनंतवे भाग से अधिक है तो उसको हम अनंत भाग वृद्धि नाम दिया उसका। इस स्थानांतर में स्पर्धक शलाकाओं का भाग देने पर स्पर्धकांतर होता है। स्थानांतर यानी दो स्थानों के अंतर को स्पर्धक शलाका से भाग देते हैं तो नंबर ऑफ स्पर्धक का अंतर आता है, स्पर्धकांतर आता है। यह स्पर्धकांतर पूर्व के स्पर्धकांतर की अपेक्षा अनंतवे भाग से अधिक है। ये तो पहले भी हमने देखा था, पहले और दूसरे में, दूसरे और तीसरे में, इस तरह से अनंतवा भाग, स्पर्धकों का अंतर है वो अनंतवे भाग से ज्यादा है, क्योंकि वह स्पर्धक शलाकाओं के समान है। स्पर्धक शलाकाएं समान है और यहां अंतर जो है वो अनंतवे भाग से बढ़ता है। फिर सब जीव राशि का तृतीय अनंत भाग वृद्धि स्थान में भाग देने पर, जो लब्ध हो उसे उसी में प्रतिराशि करके मिलाने पर चतुर्थ अनंत भाग वृद्धि स्थान होता है, यानी चौथा स्थान आता है। तीसरे वाले को जीव राशि का भाग दो, जो संख्या आएगी वो तीसरे में ही मिला दो तो चौथा आएगा, चौथा स्थान आएगा। यहां पर भी स्थानांतर और स्पर्धकांतर की परीक्षा पहले के ही समान करनी चाहिए। परीक्षा एक शब्द है। इस प्रकार कांडक मात्र अनंत भाग वृद्धि स्थानों के समाप्त होने तक ले जाना चाहिए। कांडक का अर्थ क्या देखा था हमने, सुचंगुल के असंख्यातवे भाग बार अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि। अब हर एक के इन्होंने चार बार तो बताया, तो हर एक को जीव राशि से भाग दो और उसी में मिला दो तो आगे वाला स्थान होगा, ऐसे कांडक बार करना। अब आगे वाला सूत्र, ये 204 नंबर का सूत्र बहुत लंबा चला ना, चार दिन चला। हाँ, ये 135 पृष्ठ पर था। देखो वहां क्या लिखा था, षटस्थान प्ररूपणा में, जरा निकालना 135 पान, 204 नंबर का सूत्र, 135 पेज। षटस्थान प्ररूपणा में अनंत भाग वृद्धि किस वृद्धि के द्वारा वृद्धिंगत हुई है, यानी अनंतवा भाग कौन से अनंत से भाग देने पर हुआ है, ऐसा प्रश्न पूछा। तो कहते अनंत भाग वृद्धि सब जीवों से वृद्धिंगत हुई है, यानी अनंतवा भाग जो है वृद्धि होने वाला उसका प्रमाण है सब जीव, सब जीवों के द्वारा उसमें अनुभाग बढ़ता है, ऐसी कुछ बात नहीं है। अब हाँ, वो संख्या को लेना। वैसे अभी यहां असंख्यात भाग परिवर्धी काय परिवर्धी है, क्योंकि असंख्यात के भी असंख्यात वेरिएशन है। जब हम असंख्यातवा भाग बढ़ गया कहेंगे तो कौन से वाला लेना, समझ में आता है ना। हाँ, देखो ये प्रश्न क्यों हुआ, क्योंकि जो हमने जघन्य के साथ कंपेयर करते हैं ना हमेशा, जैसे हमने वहां भी 2400 वगैरह का उदाहरण लेके देखा था अवगाहना के स्थानों में, तो जघन्य के स्थान हम कंपेयर करते हैं तो असंख्यात अलग अलग असंख्यातों से भी भाग देते हैं, हम उत्कृष्ट से लेकर जघन्य तक सबसे भाग देते हैं, और उसमें एक एक वैल्यू अपनी एक आई आनी चाहिए, बस इतना ही, अलग अलग असंख्यातों से भाग। और यहाँ असंख्यात का प्रमाण वो कायम रहेगा, और जिसको भाग देते हैं वो संख्या बढ़ती चली जाएगी, ये दोनों में वेरिएशन है। वहां अपना क्या एक एक प्रदेश बढ़ना चाहिए था वो अवगाहना में, तो वो एक कैसे आएगा, तो भले छोटे असंख्या से भाग दो, बड़े से दो, जो कुछ है वो। अब यहां ये बात नहीं है, देखो इसलिए कहते हैं, इसलिए असंख्यात का प्रमाण पूछ रहे हैं कि असंख्यात, ख्याल में है ना, वहां का इसमें डिफरेंस जो है, असंख्यात भाग वृद्धि किस वृद्धि के द्वारा होती है, यानी असंख्यात भाग वृद्धि के लिए कौन से असंख्यात से भाग देना चाहिए, ये प्रश्न का पूछना है। यह पृच्छा सूत्र जगन्य परिता संख्यात से लेकर उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात तक इन असंख्यात स्थानों, संख्या के स्थानों का अवलंबन करके स्थित है। क्या कहते हैं, हमको असंख्यात से भाग देना है। तो हमने कहा असंख्यात तो बहुत टाइप के हैं, कौन कौन से होते, परिता संख्यात भी होते हैं, युक्ता संख्यात भी होते हैं और असंख्याता संख्यात भी होते हैं। कहते हर एक के तीन तीन भेद है, जघन्य उत्कृष्ट मध्यम, तो उसमें से जघन्य परिता संख्यात जो है ना वो मिनिमम पॉसिबल है और उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात वो मैक्सिमम पॉसिबल असंख्यात है। तो इनमें से कौन से वाले असंख्यात को लेना, इस प्रकार पूछने पर उत्तर सूत्र से उसका परिहार करते हैं, यानी उसका समाधान करते हैं। असंख्य ज लोग भाग परिवर्धी एवड़िया परिवर्धी, उक्त वृद्धि असंख्यात लोक भाग वृद्धि द्वारा होती है, इतनी मात्र वृद्धि होती है। ये जो लोक का प्रमाण है वो कौन से वाला असंख्यात है, एक लोक, क्या परिता संख्यात है कि युक्ता संख्यात है? मैंने पूछा लोक, एक लोक, एक लोक यह प्रमाण है वो परिता संख्यात वाला है, युक्ता असंख्याता संख्यात वाला है, क्योंकि हमने देखा ना युक्ता संख्यात में तो आवली आती है, आवली के आगे कितना ही पल्ले आता है और पल्ले के कितने आगे आके अंगुल आता है और अंगुल के कितने आगे जाके वो सारा वो तो श्रेणी वगैरह उसकी आएगी घनांगुल के आगे, और लोक तो घना घन धारा में आएगा। देखो द्विरूप वर्ग धारा में तो सुचंगुल आता है और द्विरूप घन धारा में घनांगुल आता है, घनांगुल के भी आगे कितने स्थान जाने पर श्रेणी आएगी जगत श्रेणी, और घना घन धारा में घन लोक आएगा। तो ये बहुत बड़ा प्रमाण है, फिर भी वो मध्यम असंख्याता संख्यात का है, मध्यम है वो भी, तो उसको भी असंख्यात, एक लोक को भी असंख्यात गुणा करना, उस असंख्यात लोक से भाग देना है हमको, और जो प्रमाण आएगा वो ऐड करते जाएंगे, जो नया प्रमाण आएगा फिर उसको असंख्यात लोक से भाग देंगे। तो पहले आपने, हमने एक बार इसमें पढ़ा था असंख्यात लोक बार असंख्यात लोक, या असंख्यात लोक बार सर्वजीव राशि, ऐसे जो लिखा था ना, क्योंकि बार बार उसी भागार से हमको भाग देना है। जहां जहां असंख्यात भाग वृद्धि होती है वहां भागार का कौन सा असंख्यात लेना है, तो असंख्यात लोक वाला लेना। अभी पढ़ते देखो, इतनी मात्र वृद्धि होती है असंख्यात लोक, ऐसा कहने पर जिन भगवान के द्वारा जिनका स्वरूप देखा गया है ऐसे असंख्यात लोकों का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि असंख्यात अभी लोक को भी असंख्यात से गुणा करना तो वो भी वेरिएशंस हो गए, तो यथा योग्य असंख्यात समझना, क्योंकि इस संबंध में विशिष्ट उपदेश का अभाव है। प्रथम अनंत भाग वृद्धि कांडक के अंतिम अनंत भाग वृद्धि स्थान में, अभी तक तो एक कांडक बार अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि होते होते अंतिम अनंत भाग वृद्धि हुई। अब जो असंख्यात का भाग देना है वो किसको देना, वो अनंत भाग वृद्धि का जो अंतिम स्थान है उसको असंख्यात लोगों का भाग देने पर जो लब्ध हो उसको उसी में मिलाने पर असंख्यात भाग वृद्धि का प्रथम स्थान उत्पन्न होता है। ये तो आसान है ना समझने में, अभी तक तो अनंत भाग वृद्धि होती थी, होते 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 जिस पॉइंट पर आए उतनी संख्या को असंख्यात लोक से भाग देना और जो आएगा उसी में मिला देना। यह प्रक्षेप ये हुआ होगा कि नहीं होगा, नहीं तो कल पढ़ेंगे, 10 बज गए, दोबारा इसको पढ़ेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। प्रेरणा में।